ब्रह्म भाव। इस बात की ओर आपका ध्यान अवश्य गया होगा कि हम बार बार भगवान, वेद, विज्ञान के साथ ही ब्रह्मा जी का भी स्मरण कर रहे हैं। जब सृष्टि के मूल रचयिता व पालनकर्ता सर्वसमर्थ भगवान स्वयं विद्यमान हैं, तब बीच में इन ब्रह्मा जी को लाने की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है? यह प्रश्न मन में आता ही होगा। इस रहस्योद्घाटन के लिए हमारे इस स्थूल जगत को थोड़ा ध्यान से देखिए तो ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी आदि इतने सारे स्थूल पिंड ही पिंड, इतने सारे प्राणियों के इतने सारे शरीर, सभी की अपनी अपनी जीवन धारण की आवश्यकताएं, इन आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाएं, बहुत बड़ा कार्य व्यापार चल रहा है ना? और एक भी व्यक्ति छेना हथौड़ा लेकर बाहर से इन पिंडों को गढ़ नहीं रहा है। इनका कारण तो भीतर है, बाहर नहीं। इस आंतरिक कारण का कार्य रूप परिणाम ही भीतर से बाहर आ रहा है। अतः यह सृष्टि क्रमशः महाकारण कारण से कार्य रूप परिणाम में ही प्रकट होती है और विपरीत क्रम से क्रमशः कार्य से कारण महाकारण में लीन भी होती है। इस सृष्टि को बनाने वाला कारण रूप में तो अव्यक्त रहता है, पर कार्य रूप में व्यक्त होता है। इस कारण व्यक्ता व्यक्त स्वभाव वाला है। माता पिता तो निमित्त बनते हैं। सभी प्राणियों के मातृगर्भ में शिशुओं के शरीरों का निर्माण इनके नहीं, उस कारण के हाथ में है। वह स्वयं तो कारण रूप में अव्यक्त ही रहता है, पर उसका कार्य रूप परिणाम शिशु तो हम सबके समक्ष व्यक्त होता है ना, अतः व्यक्ति कहलाता है। वर्तमान में भी हमारे अपने शरीरों की आंतरिक व्यवस्था व जीवन की अवधि उस अव्यक्त कारण अर्थात विधाता के हाथ में ही है। कोई है जो अपने लिए नहीं, व्यक्तिशः निरपेक्ष रहकर हमारे लिए ही इतना उद्योग कर रहा है, पर स्वयं निरपेक्ष रहते हुए भी हमारे कर्मों के सापेक्ष ही फल दे रहा है। अतः सापेक्ष निरपेक्ष भाव वाला है। इतने सारे स्थूल पिंड, इतने सारे शरीरों में भेद ही भेद दिखाई दे रहा है, पर स्थूल भौतिक पिंडों सहित ये सारे ही शरीर पंचभूतों से ही निर्मित हैं। अतः शरीर रूपी कार्य की दृष्टि से बाह्य रूपों में भेद ही भेद होने पर भी उपादान कारण की दृष्टि से एक रूपता होने के कारण सभी पिंडों में आंतरिक अभिन्नता है। इसी कारण उपादानों का नियमन होने से इनसे निर्मित पिंडों शरीरों का नियमन तो अपने आप होता है। इस आंतरिक अभिन्नता के कारण ही प्रकृति के बहुत सारे नियम सभी प्राणियों में समान रूप से प्रभावी होते हैं। सभी शरीरों में अनुभूति व अभिव्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं मिली हुई हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि सभी प्राणियों के अपने अपने कर्मों के सापेक्ष ही इन क्षमताओं में न्यूनाधिकता प्रकट होती है। भाई, अनंत आकाश तो सबको समान रूप से अवकाश प्रदान करता है, पर सभी अपने अपने आकारों के अनुरूप ही अपने भीतर के अवकाश का अनुभव कर पाते हैं ना? अतः यह आकारों का दोष है, आकाश का नहीं। बाह्य करणों के साथ ही सभी के अंतःकरण में भी भाव संवेदनाओं की अनुभूति की व्यवस्था है और यह व्यवस्था भी उस निरपेक्ष कारण के हाथ में ही है। व्यवस्था उस निरपेक्ष कारण के हाथ में है, पर इसकी लाभ हानि हमारे कर्मों के सापेक्ष हमारे लिए ही है। मृत्यु होने पर सभी शरीरों के ये पंचभूतात्मक उपादान अपने अपने कारण में मिल जाते हैं। सारी स्थूल सृष्टि इन प्राकृत पंचभूतों की विकृति ही है। सृष्टि के उपादान कारण इन पंचभूतों का अपना अपना गुण स्वभाव, अपना अपना कार्यक्षेत्र व अपनी अपनी कार्य पद्धति है। यह तो हम जानते ही हैं कि अग्नि का स्वभाव उष्ण व जल का स्वाभाविक गुण शीतलता है और इसी स्वभाव के अनुरूप इनकी कार्य पद्धति व कार्यक्षेत्र हैं। भूतों में इतना स्वभाव भेद होने पर भी सभी की एक ही संज्ञा है, भूत यानी जो हुआ है। कुछ ऐसा है जो इनमें एक समान है। इस आंतरिक समानता के कारण ही इन सबकी एक ही संज्ञा है। अपने अपने भावों के रूप में प्रकाशित होने व पुनः अपने स्वभाव में अंतर्लीन होने की शक्ति सब में समान है। अतः इस भाव शक्ति की समानता वाले स्थूल सृष्टि के ये पांच ही उपादान कारण होने के कारण इन सबको भूत ही कहते हैं। इस एक ही संज्ञा का भाव शक्त्यात्मक आधार ही इनको एक सूत्रता में पिरोकर इनकी उष्णता शीतलता आदि विरुद्ध स्वभावों में संतुलन स्थापित करता है। इस प्रकार सृष्टि में उपादान कारण के दो स्तर प्रकट होते हैं। प्रथम प्रारंभिक स्तर में पंचभूतात्मक कारण, जिनका अपना अपना स्वभाव कार्य पद्धति व सीमित क्षेत्र है। द्वितीय उच्चतर स्तर है। इन पंचभूतों में एक सूत्रता लाने वाला पंचभूतात्मक शरीरों के नियमबद्ध व्यवस्थापकों का भी नियमन करके इनमें एक सूत्रता स्थापित करने वाला सूत्रात्मा। इस सूत्रात्मा कार्य क्षेत्र तो सारी सृष्टि में होने से भी सभी भूतों में समान रूप से प्रभावी व व्यापक स्वभाव वाला है। ये दोनों ही आधिदैविक भौतिक स्तर जड़ चेतन मिश्रित अहम भाव वाले हैं। हमारे जन्म कर्म तो इन पर निर्भर हैं, पर हमारी अपेक्षा ये स्वतंत्र हैं। इनकी इस दिव्यता के कारण ही इन भावों के अधिष्ठाताओं को देवता और इनके अधिपति को सूत्रात्मा ब्रह्मा जी कहते हैं। शरीर भेद के कारण हमारा तो सृष्टि से भेद को लेकर ही संबंध बना हुआ है, पर देवताओं का आत्मभावमय कार्यक्षेत्र तो सभी पंचभूतात्मक पिंडों में है ना। अतः इन देवताओं का तो भेदाभेद भाव संबंध को लेकर ही सारी सृष्टि से संबंध स्थापित हुआ है। सर्वोपरि एक ही परम देव सारी सृष्टि में अभेद रूप से व्याप्त है, पर सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी व्यक्तिशः निरपेक्ष और अव्यक्त है। अभेद स्वरूप सभी से निरपेक्ष रहकर ही विविध रूपों को प्रकाशित करते हैं, पर एक विलक्षण तथ्य है कि भले ही विविध रूपों को प्रकाशित करें, पर विविध रूपों में इन्हें प्रकट करने का कार्य तो ये निरपेक्ष नहीं करते। यह विविधता रूपी कार्य तो विधाता की भाव शक्ति सापेक्ष ही होता है। हाँ, अभेद स्वरूप तो अच्छे बुरे छोटे बड़े सभी भावों से निरपेक्ष रहकर ही सभी के मूल अस्तित्व को एक समान ही प्रकाशित करते हैं ना। अतः इन भावों में भेद विविधता व असमानता उत्पन्न करना तो सबसे अभेद व्यक्तिशः निरपेक्ष स्वरूप का कार्य नहीं हो सकता। भाई, सभी में अपने होने का बोध तो एक समान ही होता है। अपनी अपनी शक्ति की न्यूनाधिकता के कारण ही भेद व विविध रूप अभिव्यक्त होते हैं ना। अतः सृष्टि की यह विविधता ब्रह्म शक्ति सापेक्ष ही है। श्री कृष्ण उद्धव जी को इस प्रकार एक ही परम तत्व के अभेद होते हुए भी भेद भावमय सृष्टि के विविध रूपों में अभिव्यक्त होने का रहस्य समझाते हुए कहते हैं। यह सबको जीवन देने वाला ही तीनों गुणों का आश्रय सर्वलोकमय अब्ज का कारण है। यह आदि पुरुष पूर्व में एक और अव्यक्त था। जैसे बीज अपने उत्पत्ति स्थान को पाकर शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदि अनेक रूपों में प्रकट होता है, वैसे ही काल की गति से शक्ति विभाजन द्वारा यह आद्य पुरुष ही अनेक रूपों में प्रतीत होता है। यह परम पुरुष एक ही है, इसके अनेक रूप मायामय हैं। जो इस रहस्य को गुरुजनों से जान लेता है वही वेदों को जानता है। निष्कर्ष, परम तत्व तो एक और अव्यक्त ही है ना, अतः हम सभी का अपने होनेपन का बोध तो कभी बंट सकता ही नहीं। यह मूल अस्तित्व बोध तो सबका एक समान और अव्यक्त ही रहता है। मायामय शक्ति विभाजन से ही क्रमशः मूल अस्तित्व बोध पर आरोपित मैं अमुक अमुक हूँ जैसा अहम भाव ही व्यक्त होने वाले शाक्त रूपों में बंटा हुआ भासित होता है। पुनरावलोकन, हम अभी तक शक्ति विभाजन को ही भूतों के भावों, देवताओं, ब्रह्मा जी के रूप में स्थूल भेदमय जगत से अभेद स्वरूप तक क्रमशः नीचे से ऊपर तक की अंतर यात्रा पूर्वक समझने का प्रयास कर रहे थे। अब स्पष्ट धारणा की दृष्टि से एक बार और ऊपर से नीचे तक यानी अव्यक्त स्वरूप से हमारे वर्तमान लौकिक स्तर तक ब्रह्मा जी, देवता और हमारी शक्ति के विभाजन का पुनरावलोकन करते हैं। भगवान परम अव्यक्त हैं, वे विशेष गुण दोषों वाले रूपों से निरपेक्ष रहकर ही सारी सृष्टि में समान रूप से व्याप्त हैं। अतः ये चैतन्य स्वरूप तो सारी सृष्टि से अभेद हैं। सर्वत्र व्याप्त इस चैतन्य स्वरूप पर ही सृष्टि के पदार्थ व प्राकृत शरीरधारी प्राणियों का एक समान मूल अस्तित्व टिका है। इस मूल अस्तित्व या स्थिति को लेकर ही इसके आश्रय से सृष्टि तक की भेदाभेद, व्यक्ताव्यक्त या कारणावस्था है, जो चैतन्य की दृष्टि से तो अव्यक्त है पर कारण शक्ति की दृष्टि से व्यक्त है, अतः व्यक्ताव्यक्त है। इस अवस्था में भी आत्मभाव के रूप में चेतना सारी सृष्टि में व्याप्त है, अतः सारी सृष्टि की व्यवस्था की कारक भी यह अवस्था ही है। इन्हें ही शास्त्र ब्रह्म से प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी कहते हैं। इन महत तत्व के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी के उपाश्रय से ही देव सृष्टि प्रकट हुई है। इनमें से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच तत्वों को तो हम जानते ही हैं। इनके अतिरिक्त और भी ऐसी अनेक छोटी बड़ी व्यवस्थाएं हैं जो सृष्टि के प्रारंभिक काल से ही बहुत संतुलित और समन्वित रूप से कार्यरत हैं। इन सब भूतादि की तत्वमयी व्यवस्था और नियमबद्धता का कारक भी सीमित क्षेत्र में व्याप्त आत्मभाव वाली चेतना है, इन्हें ही देवता कहते हैं। इन देवताओं का भी ब्रह्मा जी के समान ही भगवान और अपने तत्व दोनों के साथ भेदाभेद संबंध है। अंतर केवल इतना ही है कि ब्रह्मा जी का महत्तत्वमयी सारी सृष्टि के साथ और इन देवताओं का केवल अपने तत्व विशेष के साथ ही आत्मभाव संबंध है। ये सभी देवता अपने विशेष रूप से सापेक्ष भाव से आबद्ध होने पर भी सारी सृष्टि के अन्य प्राणियों के लिए निरपेक्ष भाव से सेवारत हैं। हमारी अपनी सभी प्राणी अथवा पदार्थों से भेद वाली अवस्था और व्यवस्था तो हम सब जानते ही हैं। हमारे भीतर तो ये परम अव्यक्त स्वरूप परमेश्वर व्यक्ताव्यक्त महत्व तत्वमय ब्रह्मा जी और इन्हीं के आश्रित ये वायु अग्नि आदि तत्वमय देवता सभी प्रतिष्ठित हैं। इस अंत प्रतिष्ठा के कारण ही हमारी आंतरिक भेदाभेदमयी व्यवस्था इन्हीं के हाथों में है। अव्यक्त रूप से वे ही इसका संचालन कर रहे हैं, हम तो उनसे व्यक्त होने वाले कार्य रूप परिणाम को ही देखते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि बाह्य भेद को लेकर शरीर संसार की जितनी भी व्यावहारिक व्यवस्थाएं हैं ना, वे सब की सब हमारे ही हाथों में है। अतः हमारे इन कर्मों के उत्तरदायी भी हम स्वयं ही हैं। इन सब सिद्धांतों की ओर बहुत सार्थक संकेत करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं,
सृजति हरति पाति त्याख्यानावृताक्षो विवृत इव निरुक्तस्तत्परैरात्मलभ्यः।
हे द्विजश्रेष्ठ शौनक जी, ब्रह्मा और शब्द ब्रह्म वेद को प्रकट करने वाले वे एक ही स्वयं प्रकाश भगवान अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से जगत का सृजन पालन संहार करते हैं। इन सब कर्मों से उनका विज्ञान कभी आवृत नहीं होता। शास्त्रों में भिन्न के समान ही इनका वर्णन हुआ है, पर वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। हाँ, भगवान तो स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप हैं। इन्हें अपने अस्तित्व व आनंद के लिए किसी की भी अपेक्षा नहीं है। अतः पूर्ण निरपेक्ष परमात्मा तो अपने आश्रय स्वयं ही हैं। पर ब्रह्मा जी का अस्तित्व तो भगवान पर आश्रित है। भाई, जो जिसके आश्रित है ना, उससे अपेक्षा तो रहती ही है। अतः ब्रह्मा जी का अस्तित्व व संबंध भगवान के सापेक्ष ही है। अपने से प्रकट होने वाली निम्न सृष्टि पर इन ब्रह्मा जी का अस्तित्व व आनंद निर्भर नहीं है ना। अतः कोई अपेक्षा न रहने से वे इस निम्न सृष्टि से निरपेक्ष हैं। इस प्रकार वे सापेक्ष निरपेक्ष स्वभाव वाले हैं। चैतन्य स्वरूप भगवान के आश्रित होने पर भी ब्रह्मा जी तो अपने से प्रकट होने वाली सृष्टि के आश्रय है ना। अतः इस कार्य सृष्टि को अपने कारण ब्रह्मा जी से अपेक्षाएं ही अपेक्षाएं हैं। अतः इस भेदमयी सृष्टि में तो सापेक्षता ही सापेक्षता है। परमाश्रय, अरे केवल भगवान और ब्रह्मा जी से ही नहीं, हम सभी प्राणियों को तो अपने जीवन व सुख के लिए एक दूसरे से भी अपेक्षाएं ही अपेक्षाएं हैं। इस दृष्टि से तो हम सभी न जाने कितनों के आश्रित बनकर अपने मूल आश्रय को ही भूल गए हैं। यह श्रीमद् भागवत की परम मंगलमयी कथा इस विस्मृत परमाश्रय तत्व की सिद्धि के लिए ही भूतल पर प्रकट हुई है। भूति के इस सापेक्ष क्रम के विपरीत अनुभूति के निरपेक्ष क्रम को अपनाकर हम इस भेद सृष्टि से क्रमशः भेदाभेद और पूर्ण अभेद परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मायिक सृष्टि के ये सारे ही स्तर हमें भिन्न भिन्न रूपों व स्वभाव के दिखाई देने के कारण व्यवहार की दृष्टि से शास्त्रों में इनका भिन्न के समान ही वर्णन हुआ है। पर जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे ये भेद और भिन्नता एक ही अभेद स्वरूप में विलीन होने लगती है। अतः भगवान तो सभी भक्तों को अपने से अभिन्न आत्म स्वरूप में ही प्राप्त होते हैं। ऋषि परंपरा। भाई, एक समय था जब ऋषियों के सत्संकल्प सत प्रयासों से हमारा सत्य सनातन धर्म जन जन के अंतरतम में अपने पूर्णतम स्वरूप में प्रतिष्ठित था, पर दुर्भाग्यवश युगों युगों से निरंतर प्रवाहित होने वाली हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा अब बहुत ही क्षीण धारा के रूप में परिणत हो गई है। ओह, अब तो हमें ऋषि परंपरा के परिपूर्णतम स्वरूप की झलक केवल कथाओं में ही मिलती है, पर उन महाप्राण मानवों की कथाएं भी इतनी जीवंत हैं कि उनकी कथा सरिता में अवगाहन करने वाले प्रत्येक मानव के विषय विस्मय मन का मंथन कर उसमें अंतर्निहित अमृतमय सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करने में समर्थ है। सृष्टि सृष्टा के साथ एकात्म भाव उन ऋषियों की कथाएं न किसी एक देश की कथाएं हैं, न एक काल की, न एक विषय की हैं, न व्यक्ति विशेष की। ये कथाएं तो समष्टि चेतना की विशिष्टता को अपने चिरंतन स्वरूप में आत्मसात करके प्रवाहित होने वाली सारी मानवता को अपने में समाहित करने वाली सत्संग सरिता है। इसमें तो धर्म भी है, अध्यात्म भी, दर्शन भी है, विज्ञान भी, इतिहास भी है, पुराण भी, देव भी है, मानव भी, लोक भी है, परलोक भी, पर भी है, अपर भी, कारण भी है, कार्य भी, एक ही सब रूपों में परिणत हुए हैं और सब मिलकर भी एक ही है। एक अकेला भी पूर्ण है और सब मिलकर भी उतने ही पूर्ण है। युग धर्म, इस अति अद्भुत कथा प्रसंग में ही हमने भगवत इच्छा से ब्रह्मा जी की सृष्टि व कारण सृष्टि के साथ एकात्म भाव वाले ब्रह्मा जी के मानसिक सत्संकल्प से सत्व की प्रधानता वाले देव मानव ऋषियों की सृष्टि के क्रम को जाना है। जैसे ब्रह्मा जी ने तप किया था, वैसे ही इनके मानस पुत्र ऋषियों ने भी अपने स्तरानुसार सात्विक तप से श्रुतियों का साक्षात्कार किया था। श्री सुखदेव जी महाराज इस पावन प्रसंग को सुनाते हुए राजा परीक्षित से कहते हैं,
चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान् यथा तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः।
चतुर्युगी के अंत में काल के विपरीत क्रम से श्रुतियां भी लुप्त प्राय हो गई थी। सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों ने तप से उन श्रुतियों का साक्षात्कार किया था। इन श्रुतियों से ही सनातन धर्म का मौलिक स्वरूप प्रकट हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को सुलभ होता है ना, ऐसे ही सबके प्रति आत्मभाव रखने वाले इन परम सत्यनिष्ठ देव मानवों के लिए सभी की अनुभूति का द्वार उन्मुक्त था, अतः स्वर्ग के देवता भी सुलभ थे। सत्ययुग, हाँ, सात्विक देवता ही नहीं, सत्स्वरूप परमात्मा भी उनके लिए सुलभ थे। इसीलिए सत्व प्रधान उस युग को सत्ययुग कहा गया। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने उन मानस पुत्रों का विवाह करवा दिया। इसी से मानवीय संसर्ग सृष्टि का विस्तार होने लगा। वे तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, पर ऋषियों की इन संतानों में ठीक उनके जैसी योग्यता का न रहना स्वाभाविक था। अतः उन्हें तत्वानुभूति के लिए सात्विक तप के साथ गुरुजनों से विधिपूर्वक स्वाध्याय का भी आश्रय लेना पड़ा। श्रुति के इस अभ्यास से ही क्रमशः अंतर्याग पूर्वक वेदार्थ की उपलब्धि होने के कारण वे श्रुतर्षि कहलाए। कालांतर में जब कुछ मानवों की वैसी पात्रता भी न रही, तब आचार्यों ने वेद मंत्रार्थ की अनुभूति के लिए सृष्टि की वैज्ञानिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प व निरुक्त इन 6 वेदांगों का प्रणयन किया। इन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों के शिष्य सेवकों ने अपनी सात्विक जिज्ञासा पूर्वक उन श्री गुरु चरणों के निकट बैठकर विनम्र भाव से जो जो प्रश्न पूछे, परमार्थ को प्रकट करने वाले उस सद्गुरु सच्शिष्य संवाद को ही उपनिषद कहा गया। शिष्यों की पात्रतानुसार बहुत ही सरलता पूर्वक दिए गए इन उपदेशों में गुरु गंभीर वेदार्थ ही प्रकट हुआ है। त्रेता, निरंतर गतिमान काल चक्र के प्रभाव से प्रकृति में रजस की वृद्धि के साथ ही साथ मानवों के कर्मशील मन में भी थोड़ा रजस बढ़ने लगा। अतः कुछ मानवों में वेदार्थ को प्रकट करने वाले अंतर्याग की पात्रता नहीं रही, तो अंतर्याग के रहस्य को जानने वाले महाप्राण ऋषियों ने उन्हीं नियमों उपनियमों का उपयोग करते हुए अंतर्याग की धारणा के लिए ही कर्म कांड को विस्तार देकर कर्म योगमय अनेक विधि विधानों से युक्त बहिर्याग का विधान रचा। गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आह्वनीयाग्नि तीनों अग्नियों का एक ही ब्रह्माग्नि में समाहार करने वाला वह युग त्रेता कहलाया। द्वापर, कालांतर में प्रकृति में रजस तमस बढ़ने से कुछ मानवों की सत्वमयी धारणा शक्ति घटने लगी, तो जिनको अपने ही अंतस्थल में प्रतिष्ठित आत्मस्वरूप परमात्मा भी अपने से विभक्त लगने लगे, तब वेदों के उन्हीं परम लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही उन मानवों के लिए बाह्य प्रतिमा पूजन के अभ्यास से मानस पूजा की पात्रता अर्जित करने का प्रावधान किया गया। इसमें दोनों की सुविधा थी, जिनके बाह्याभ्यंतर का भेद नहीं रहता था वे भी एकात्म भाव से आत्मीयता पूर्वक चिन्मय भगवत विग्रह का पूजन करते थे, और जिनमें यह भेद बना हुआ था वे भी बाह्य पूजन से आभ्यंतर धारणा का अभ्यास करते थे। समन्वय, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सत्ययुग त्रेता में प्रतिमा पूजन का विधान ही नहीं था। अपनी अपनी रुचि, पात्रता, विशेष उद्देश्यों की सिद्धि के लिए सत्ययुग में भी प्रतिमा पूजन और बहिर्याग संपन्न होते थे। दूसरी ओर द्वापरांत में भी तपस्वी ऋषियों ने सीधे ही अंतर्याग पूर्वक वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया था और विधि विधान पूर्वक वैदिक यज्ञ संपन्न करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति क्रम मुक्ति या सद्य मुक्ति होने वाले महापुरुष भी उस समय विद्यमान थे। इस तमस प्रदान घोर कलिकाल में यह धारा अत्यंत क्षीण हो गई है, तब भी इसका सर्वथा अभाव नहीं है। देश, काल, व्यक्ति और व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सभी युगों में सभी साधन न्यूनाधिक मात्रा में संपन्न होते रहते हैं। भाई, युगों का इतिहास न तो किसी एक व्यक्ति का इतिहास होता है और न एक व्यक्ति के लिए लिखा जाता है, यह तो समष्टि भाव से सभी के हित के लिए ही लिखा जाता है। अतः जिस जिस युग में जिन जिन साधनों की प्रधानता होती है न, उन्हीं को प्रमुखता दी जाती है, अन्य विषय गौण कर दिए जाते हैं। ऐसे इतिहास में जहाँ कहीं किसी भी व्यक्ति अथवा एक चुनी हुई घटना का वर्णन आता है ना, वह केवल उस व्यक्ति का ही नहीं, उस काल का प्रतिनिधि रूप प्रसंग समष्टि हित की भावना से प्रकाशित किया जाता है। वैसे इन सभी युगों के साधनों को बहुत ध्यान से देखें ना, तो हम पाएंगे कि ऊपर से थोड़ा भेद दिखाई देने पर भी सबका लक्ष्य तो एक परम तत्व ही है। अतः जैसे भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में बहुत भेद दिखाई देने पर भी एक ही काल तत्व इन तीनों में समान रूप से समाया हुआ है ना, ठीक ऐसे ही ज्ञान, कर्म, भक्ति के इन सभी साधनों में एक ही अंतर्याग समाहित है। अतः एक ही अंतर्याग सभी में समान रूप से संपन्न होता है और सभी से एक ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। इसी कारण बाहर से अलग अलग दिखाई देने पर भी वस्तुतः ये सब एक ही है। श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कलयुग के दोषपूर्ण समझाते हुए कहते हैं,
कृते यज्ञायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्चायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्।
सत्ययुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञों द्वारा यजन करने से और द्वापर युग में विधिपूर्वक पूजा करने से जो फल मिलता है, वही फल कलयुग में श्री हरि का कीर्तन करने से अर्थात भगवान के नाम, रूप, लीलाओं का गुणगान करने से ही मिल जाता है। सात्विक पृष्ठभूमि वाले सत्ययुग में तो अधिकांश मानवों के लिए परमात्म तत्व का ध्यान सहज संभव था। ध्यान की इस अवस्था में तो अंतर्याग स्वतः होता था। त्रेता में इसी अंतर्याग और अंतर्यात्रा के लिए बाह्य यज्ञ का सहयोग लेना पड़ा। द्वापर में प्रतिमा पूजन के द्वारा यही अंतर्यात्रा और भगवान का ध्यान सहज संभव हुआ। अब कलयुग में तो ध्यान ही नहीं, विधि पूर्वक यज्ञ और पूजन भी सभी को सुलभ नहीं है, पर भगवान के नाम, रूप, लीला के यशगान से ठीक यही प्रक्रिया हमारे अंतस्थल में सुसंपन्न हो जाती है। इस श्लोक में सत्ययुग के लिए कृत युग शब्द का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। भाई, कृत युग का सहज संभव स्वरूप ध्यान तो अभी हम कर ही नहीं सकते ना, अतः कृत कार्य भी नहीं है, पर लीलामय चिन्मय स्वरूप ने प्रकट होकर जो किया है उसका कीर्तन तो कर ही सकते हैं, है ना? अनेक दोषों वाले कलयुग का यही सबसे बड़ा गुण है कि हमारे अपने ही परिपूर्णतम स्वरूप भगवान ने जो किया है उसका भक्तिपूर्वक गुणगान करने से ही जो अभी हम कर ही नहीं सकते वह करने का फल भी हमें सहज रूप से मिल जाता है, हम भी कृतकार्य हो जाते हैं। चिति शक्ति। भाई, चैतन्य स्वरूप अस्तित्व तो सदा एक रस ही रहता है। उसमें तो न घटना है न बढ़ना, न निर्माण है न विध्वंस, पर सृष्टि में तो यही सब होता रहता है। अतः यह सिद्ध होता है कि इस सृष्टि के मूल में एक ऐसी शक्ति अवश्य ही है जिसका मूल अस्तित्व तो बना ही रहता है पर निरंतर परिणाम को भी प्राप्त होती रहती है। परिणाम को प्राप्त होते रहने पर भी अस्तित्व बना ही रहता है। यह अनित्यता में नित्यता तो केवल और केवल सदा अचल अविनाशी चैतन्य स्वरूप के आश्रय से ही संभव है ना। अतः यह सारी सृष्टि चिन्मय सत्ता और चिति शक्ति का लीला विलास ही है। यज्ञ का स्वरूप। भगवदाश्रय पूर्वक बहुत ही व्यवस्थित रूप से क्रमशः विरूप, स्वरूप, परिणाम को प्राप्त होने वाली शक्ति की इस वैज्ञानिक व्यवस्था को ही यज्ञ कहते हैं। अतः हमारे अंतर्याग हो या बहिर्याग, स्वरूप परिणाम वाले इन दोनों यागों में सृष्टि की इस शुद्ध वैज्ञानिक व्यवस्था का ही सदुपयोग होता है। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और इन ज्ञान भक्ति का मिलन स्थल प्रयागराज में देखा है ना, जहाँ प्रकृष्ट रूप से संपन्न होने वाले याग के फल स्वरूप भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली और अपने अपने रूपों वाली दो धाराएं मिलकर एक स्वरूप हो जाती हैं, वह केंद्रीय स्थल। हम स्वयं इन दोनों धाराओं के साथ मिलकर एक नहीं हो जाते, तब भी उनको एक होते देखकर ही मन कैसे आह्लाद से भर जाता है, है ना? आप थोड़ा सोचिए तो, स्वरूप का बोध देने वाला यह प्रकृष्ट याग हमारे भीतर ही हो तो कैसा लगेगा? हाँ, सृष्टि के सारे ही प्राणियों का अपना अपना अस्तित्व भी है और सभी में शक्ति ही अनेक रूपों में क्रीड़ा कर रही है। सभी में शक्ति के इस बाह्य रूप के कारण ही हम अस्तित्व को भी अपना अपना कह देते हैं। यदि बहिर्याग के फल स्वरूप अहम की आहुति पूर्वक यह विचित्रता विविधता न रहे तो अस्तित्व तो सदा एक रस ही है, स्वरूप रस तो सदा एक ही है, है ना? चिन्मय सत्ता की प्रधानता से वेदों में इसी सृष्टि यज्ञ की प्रतिष्ठा है और चिति शक्ति की प्रधानता को लेकर तंत्र इसी याग यज्ञ व्यवस्था को प्रकट व परिभाषित करते हैं। वेदों में चैतन्य की प्रधानता होते हुए भी सहयोगिनी शक्ति का समावेश है और तंत्र में शक्ति की प्रधानता होते हुए भी लक्ष्य व आश्रय चैतन्य ही है। अतः दोनों में अंतः साम्य है, कहीं भी अंतर विरोध नहीं है। इसी कारण हमारे मनस्वी आचार्यों ने केवल वैदिक दृष्टि से, केवल तांत्रिक रीति से या दोनों को मिलाकर समन्वित पद्धति से साधना का निर्देश दिया है। श्रीमद् भागवत में भी यह आर्ष परंपरा इसी रूप में प्रकट हुई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अपनी पूजा अर्चना की विधि समझाते हुए वैदिक या तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करने का आदेश देते हैं।
सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम्।
योगीश्वर आविर्होत्र जी राजा निमि को शीघ्र सिद्धि का रहस्य समझाते हुए कहते हैं,
आशु हृदय ग्रंथिम निर्जिहीषु परात्मनः विधिनोपचरेत् देवम् तंत्रोक्तेन च केशवम्।
जो पुरुष यह चाहता है कि शीघ्र ही मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि खुल जाए, वह तांत्रिक और वैदिक विधियों से भगवान का पूजन आराधन करे। योगेश्वर करभाजन जी भी राजा निमि को युग धर्म समझाते हुए कहते हैं,
तम तदा पुरुषम क्षणम् यजन्ति वेदतंत्राभ्याम् परम् जिज्ञासवो नृप।
जिज्ञासु पुरुष वैदिक और तांत्रिक विधियों से परम पुरुष भगवान का यजन करते हैं। आगम निगम। शक्ति सीधे ही स्थूल रूप में प्रकट नहीं होती, यह तो परंपरा से ही क्रमशः परिणाम को प्राप्त होते हुए स्थूल रूप में अभिव्यक्त होती है। ऐसे ही तंत्र परंपरा से प्राप्त होने के कारण आगम कहलाते हैं और स्वभावतः स्पंदित होने वाले वेद को निगम कहते हैं। केवल एक संज्ञा निगम ही नहीं, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने वेदों की विशिष्टता को अनेक रूपों में परिभाषित किया है। अतः इसकी छंद, शब्द ब्रह्म, श्रुति आदि अनेक संज्ञाएं हैं। परम सत्य का पुराण विज्ञान। वेद चिन्मय सत्ता की प्रधानता को लेकर प्रकट होते हैं और तंत्र चित्त शक्ति की प्रधानता को लेकर सृष्टा सृष्टि और साधन शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं, पर पुराण तो इनसे भी विलक्षण रीति से चिन्मय सत्ता और चित्त शक्ति के समन्वित स्वरूप भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं के भाव भरे यशोगान में निमग्न रहते हुए ही इन सबको परिभाषित करते हैं। हाँ, परम सत्य का विज्ञान पुराणों की आत्मा है और इसी विज्ञान की काव्य कथा के रूप में कलात्मक अभिव्यक्ति ही इनका नाम रूपात्मक शरीर। केवल अभिव्यक्ति ही नहीं, इसकी अनिर्वचनीय अनुभूति का कला कौशल ही पुराणों का बाह्याभ्यंतर श्रृंगार है। देखो भाई, ये सुख दुख लोभ मोह आस्था प्रेम विश्वास आदि भाववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द है ना, इन सब का कोई स्थूल रूप नहीं होता, पर हमारे सारे ही जीवन की कुंजी ये भाव ही हैं। इनमें से किसी एक का या एकाधिक भाव संवेदनाओं को केंद्र में रख कर ही हमारा सारा जीवन संचालित होता है। हम वर्तमान में इनके बिना एक भी कर्म करने में समर्थ नहीं है। ये भाव संवेदनाएं शुद्ध होती हैं तो जीवन भी पवित्र व सुखी होता है, और अशुद्ध होती है ना तो हमारा यह जीवन संसाधनों की अधिकता होते हुए भी अपवित्र व अतृप्त ही बना रहता है। इतना अधिक महत्व होते हुए भी इनकी केवल बौद्धिक व्याख्या से ही मन को सुधारा व संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मन तो भाव संवेदनाओं का पुंज है ना, अतः पुराणों की शुद्ध व सकारात्मक भाव संवेदनाओं की कलात्मक प्रस्तुति से ही इनकी धारणा होती है। और हाँ, केवल शुद्ध भाव संवेदनाओं के बीजारोपण या इनकी पुष्टि की बात ही नहीं है, पुराणों की ये कथाएं तो बातों ही बातों में स्वयं भगवान को ही हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान कर देती हैं। हम तो इन सरस कथाओं में इतने मुग्ध हो जाते हैं कि न तो कथाएं सुनते समय हमें समय का ज्ञान रहता है और न ही भगवान के हृदय में विराजित होते समय समय का भान हो पाता है। भाई, कालातीत परम सत्य की उपलब्धि के लिए इतना तो कालबोध से रहित होना ही पड़ता है ना।